Om Shanti. Good morning. How are you all? अच्छा लग रहा है आपको? Okay. So राजयोगा की सीरीज में आज हम दीदी जी का वेलकम करते हैं और दीदी जी का नाम है ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी जी, जो अपनी स्वीट वॉइस और काम नेचर के लिए जानी जाती हैं। हम सभी तहे दिल से दीदी का स्वागत करते हैं। आप पिछले 25 साल से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में राजयोगा टीचर और स्पोक्स पर्सन है, साथ ही स्पोर्ट विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपकी शिक्षा भी अत्यंत समृद्ध रही है। आपने एमएससी इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है। आपने अपने ज्ञान का योगदान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के लिए भी किया है। आपके देश में कई मेडिकल और पैरामेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के माध्यम से काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में विशेष मार्गदर्शन दिया है। इतना ही नहीं, आपके कई आध्यात्मिक व्याख्यान और टॉक शोस पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल, दिव्या टीवी, दिशा टीवी जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रस्तुत हो चुके हैं। आपने जी न्यूज में न्यूज रिपोर्टर में अपना योगदान दिया है एज अ न्यूज रिपोर्टर। दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार के रूप में कई सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन, आयुष मिनिस्ट्री, नवकार वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे अनेक सामाजिक और व्यवसायिक संस्था से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और राजयोगा की सीरीज में आज विषय होगा साइकिल ऑफ टाइम। ओवर टू यू रिस्पेक्टेड दीदी जी। ओम शांति।
ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस बड़े विश्वविद्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग स्कूल से आए हैं यहाँ पर। ये हमारा बेहद का स्कूल है और इस बेहद के स्कूल की खासियत है यहाँ एज की लिमिट नहीं है। आप देखो, कईयों के साथ उनके बच्चे भी आए हैं। एक ही स्कूल में मम्मी भी पढ़े और पापा भी पढ़े और बच्चे भी पढ़े, कभी देखा है? यहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, मात पिता सब इकट्ठे एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सिटी है, प्रैक्टिकल में सारे यूनिवर्स के लिए है। और यहाँ जो हम ज्ञान सुन रहे हैं वो भी अनलिमिटेड है, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए, हर रिलीजन के लिए, हर व्यक्ति के लिए। छोटा है या बड़ा है, ऊंच है या नीच है, सबके लिए है। और ये ज्ञान सारी सृष्टि में एक बार हम सभी का एक पिता परमात्मा कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत वंडरफुल है, बहुत एंटरटेनिंग है। जब हमारा मन करता है मनोरंजन का तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं। देखते हैं ना। तो आज आपको इस सृष्टि रंगमंच पर जो बेहद का ड्रामा हम सब ने अदा किया है, उस सारे फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाएंगे और उसका अनुभव भी कराएंगे। करेंगे सभी? बहुत एंटरटेनिंग है और अगर आप इसको एंटरटेनिंग तरीके से देखेंगे तो आपको अपने जीवन में आज से आनंद आने लग जाएगा। जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिलने लग जाएगा, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो नजारे खुद ब खुद बदलने लगते हैं। इफेक्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति हर सीन को इस दुनिया में अपने नजरिए से देखता है और उसी अनुसार एक्ट या रिएक्ट करता है। ऐसा है, एक चीज आपके लिए सही है और वही चीज दूसरे के लिए गलत है, ऐसा क्यों? दृश्य सेम है पर दृष्टिकोण अलग है। तो जब आपका एक वैसा नजरिया बनेगा जिस नजरिए से खुद भगवान ने, सुप्रीम क्रिएटर ने इस सारी क्रिएशन को रचा है, तो आपको इस ड्रामा में भी आनंद आने लग जाएगा जैसे आपको अपने घर में उस मूवी को देखते हुए, उस ड्रामा को देखते हुए आनंद आने लगता है। तो अब तक के सत्रों में आपने स्वयं को जाना, स्वयं के पिता को जाना, पिता को याद कैसे करना है, उसे साथ कैसे रखना है, उस विधि को भी जाना। पर हम अक्सर ही क्वेश्चन उत्पन्न करते हैं कि ये दुनिया क्या है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। आज आपके उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच के बेहद के एक्टर हो। क्या है हम सब, कहते भी है ना दुनिया में, क्या कहते हैं, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। शेक्सपियर ने क्या कहा, ऑल द वर्ल्ड एंड स्टेज एंड ऑल द मेंस एंड वुमेन्स मेयरली प्लेयर्स। इस सृष्टि एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सभी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा है, पर क्या होता है, एक्टर एक्ट करते करते कभी कभी रिएक्ट भी करने लगता है। इनफैक्ट देखा जाए तो हम एक्शन कम करते हैं और रिएक्शन ज्यादा देते हैं, है ऐसा? कौन कौन सहमत है? हमारा रिएक्शन क्या होगा डिपेंड करता है सामने वाला क्या करता है। जैसे बिजनेस होता है ना, जैसे घरों में भी माताएं करती, उसने कितना दिया है उस अनुसार हम देंगे, है ना। वैसे ही इस दुनिया के अंदर भी हमारी आदत हो गई है रिएक्ट करने की, परंतु है तो हम एक्टर ना। तो आज सबसे पहले, क्योंकि अब तक ना हम अपने रोल में इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि अपने आप को सोल समझना भूल गए हैं, तो दो चीजें, मैं सोल और ये मेरा रोल, मैं सोल ये मेरा रोल, ऐसे कई रोल मैंने अनेक जन्मों में अदा किए हैं। सबसे पहले हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकेंगे और उसके लिए हम एक शक्तिशाली महामंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि स्मृति आए हम कौन है, और फिर उस स्मृति में हम टिक जाएं। क्योंकि यहां पर आते हुए भी सबको याद आता होगा मैं कौन हूं, मैं इस स्कूल का टीचर हूं, मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं मदर हूं। अलग अलग तरह के रोल कॉन्शियसनेस में हम आ गए। अब हम खुद को सोल समझकर रोल अदा करेंगे। करेंगे सभी? चलो सबसे पहले हम तीन दफा ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते हुए अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति में टिकाएंगे। करें, तीन दफा मेरे साथ बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे और बोलते बोलते स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि ये महामंत्र, अभी तो आप एक्सरसाइज कर रहे थे ना, ये महामंत्र बोला जाता तो मुख से है परंतु हील करता है हमारे तन को भी और हमारे मन को भी। एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अंदर और बाहर, बाहर बॉडी को भी और वातावरण को भी हील कर देती है। आइए हम सब मिलकर इस ओम ध्वनि का 3 बार उच्चारण करें। ओम शांति, ओम शांति। अब मन को बाहर की सब बातों से, जीवन में चलते उतराव और चढ़ावों से बिल्कुल अलग कर लें। बाहर जो कुछ है वो मेरा रोल है और मैं इस रोल को अदा करने वाले चेतन शक्ति आत्मा इस देह में मस्तक के मध्य चमक रही हूं। महसूस करें मैं सोल अलग हों, शक्ति हों। बाहर मेरा कॉस्ट्यूम है, इस कॉस्ट्यूम को धारण करके मैं अपना निश्चित किरदार अदा कर रही हूं। मैंने इससे पूर्व भी बहुत से जन्मों में अलग अलग कॉस्ट्यूम धारण किए हैं। कभी मेल कॉस्ट्यूम मिला, कभी फीमेल कॉस्ट्यूम मिला। और इस जन्म में इस कॉस्ट्यूम में रहते भी मैं सारे दिन में भिन्न भिन्न किरदार अदा करती हूं। कभी किसी की मां बन जाती हूं, कभी किसी की बहन बन जाती हूं, कभी किसी की सखी बन जाते हो, कभी टीचर बन जाते हो, कभी बेटी बन जाते हो। मेरा हर किरदार अलग है और इन किरदारों को अदा करने वाली मैं अलग हूं। मैं जो भी किरदार अदा करूं, पर मैं हीरो एक्टर हूं। हर एक्ट परफेक्टली अदा करते हूं। महसूस करें इस सत्यता को। ओम शांति। और अब जानते हैं कि अब तक हम सभी ने इस ड्रामा में क्या क्या किया। शुरू से लेकर अब तक इस ड्रामा में क्या क्या हुआ, क्योंकि इस ड्रामा में ये तो समझ गए हैं कि हम सभी सोल हैं और इस ड्रामा का डायरेक्टर सुप्रीम सोल है। परंतु जब बात आती है कि इस ड्रामा का आदि क्या था, मध्य में क्या हुआ और अंत क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क बुद्धि में आ जाता है। दुनिया में भी जब प्राचीन ऋषि मुनियों से किसी ने पूछा कि रचता और रचना का ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा नेति नेति, हम नहीं जानते हैं। परंतु आप स्वयं क्रिएटर, स्वयं रचयिता, इस सृष्टि रंगमंच का आदि मध्य अंत आप सभी को बता रहा है। तो आप सभी वो भाग्यशाली एक्टर हो जिन्हें अपने जीवन काल, अपने पूर्व जीवन काल और आने वाले जीवन काल के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलने जा रहा है। तो स्वयं नॉलेजफुल, स्वयं सुप्रीम टीचर हम सभी को इस सृष्टि रंगमंच का गहरा राज बता रहा है। सुनेंगे सभी, वंडरफुल ड्रामा है, और ये राज अगर आपको पता चल जाए, आपको इस ड्रामा में आनंद आने लग जाएगा। तो शुरू करते हैं, इस मूवी का आरंभ कैसे हुआ। देख रहे हैं सभी मूवी, रेडी? मन बुद्धि को चारों तरफ से हटा लें और देखें इस ड्रामा के अंदर अब तक क्या क्या हुआ। तो जैसे हर फिल्म की एक ड्यूरेशन होती है, इस दुनिया में भी हर चीज एक साइकिल की तरह घूम रही है। जैसे ऋतुओं की साइकिल होती है, जैसे इस दुनिया के अंदर वाटर साइकिल होती है, हर चीज रिपीट होती रहती है, एज इट इज रिपीट होती है। साल शुरू होता है, अंत होता है, जनवरी से दिसंबर पर आते हैं और फिर जनवरी आ जाता है। दिन की भी साइकिल होती है, 24 आवर्स की साइकिल होती है। दुनिया में हर चीज चक्र की भांति चल रही है और हर एक चक्र की ड्यूरेशन वैरी कर रही है। किसी की 24 आवर्स, किसी की 365 डेज। परंतु सबसे बड़ा चक्र है सृष्टि चक्र, जिसकी ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। जैसे सारे दिन के अंदर हम चार फेजेस से होकर गुजरते हैं। शुरू में आता है दिन, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। तो चार प्रहरों से होकर ये पूरा दिन गुजरता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। फिल्म के अंदर भी ऐसा होता है, शुरू में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे ड्रामा के एक्टर्स बढ़ते जाते हैं और फिर इंटरवल से ठीक पहले किसकी एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, विलन की एंट्री होती है। और फिर फिल्म के एंड तक विलन जो है अपना पूरा रूप दिखा देता है। बिल्कुल ऐसे ही इस बेहद के ड्रामा में हुआ है। तो ये बेहद का ड्रामा भी चार फेजेस से होकर गुजरता है, जिसको हम कहते हैं सतयुग, दिन के अंदर सुबह का समय, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और उसके बाद रात्रि काल कलयुग। ऐसे ही ये दुनिया भी चार फेजेस से होकर गुजरे है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और सबकी ड्यूरेशन इक्वल है। 5000 ईयर का ड्रामा है तो हर युग की आयु कितनी हुई, 1250 वर्ष। तो 1250 वर्ष का ये पूरा एक एक युग है। और इस ड्रामा के अंदर हम सभी एक्टर, आपने सुना होगा इससे पहले के सेशंस के अंदर कि आत्माएं परम धाम में रहते हैं। हम एक्टर्स अपने घर सोल वर्ल्ड से इस दुनिया में सृष्टि रंगमंच पर आते हैं, बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम धारण करते हैं और एक्ट करना शुरू करते हैं। तो इस दुनिया में भी हम सभी एक्टर अपने सोल वर्ल्ड, अपने घर से इस सृष्टि रंगमंच पर आए और हमने अपना रोल अदा करना शुरू किया। अब इस सृष्टि रंगमंच पर सबसे पहले कौन सा युग आएगा? सबसे पहले कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा, है ना? और सतयुग के अंदर फिल्म के आदि में क्या होता है? सब कुछ बहुत अच्छा होता है, होता है ना? हर ड्रामा में हीरो भी परफेक्ट दिखाते हैं और हीरोइन भी परफेक्ट दिखाते हैं। तो हम सभी भी इस सृष्टि रंगमंच पर जब सबसे पहली बार आए तो सब कुछ परफेक्ट था, दुनिया परफेक्ट थी, हम भी परफेक्ट थे। जिस परफेक्शन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो इस दुनिया में था, सतयुग के अंदर। इसे स्वर्ग कहते हैं, जिसे पैराडाइज कहते हैं, जिसे बैकुंठ कहते हैं, जहां कहते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। ऐसी सतयुगी दुनिया जहां प्रत्येक आत्मा, जिसे सूर्यवंशी घराना कहते हैं, प्रत्येक आत्मा सतुप्रधान थी। सतुप्रधान यानी पहले चैप्टर में आपने पढ़ा आत्मा के सात गुण, सात गुण पढ़े ना, कौन कौन से, कौन कौन से पढ़े, कौन कौन से? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। सातों गुण बिल्कुल परफेक्ट, फुल, इसे कहते हैं फुल। इन सब सातों गुणों में आत्मा प्रधान थी, ऐसी स्थिति थी हमारी। सर्व गुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी। अब 16 यानी ऐसा नहीं कोई 16 कलाएं थी किसी के अंदर, पर 16 सेलेस्टियल डिग्री, जैसे चंद्रमा की दिखाते हैं कि वो फुल मून है तो अपनी फुल आभा दुनिया को देता है, ऐसे ही आत्मा भी अपनी फुल स्टेज में थी। उसमें हर चीज परफेक्ट थी, जो कम कर्म करती थी, जो बोल बोलती थी, जो सोचती थी, वो परफेक्ट होता था, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता था। तो वो दुनिया इस दुनिया में थी जहां हर चीज, प्रकृति और पुरुष सतुप्रधान थे, बिल्कुल परफेक्ट थे। जिसे कहते हैं गोल्डन एज, जिसे कहते हैं सोने की दुनिया। किसी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, ऐसी दुनिया में हम थे। ऐसी ब्यूटीफुल दुनिया जहां प्रकृति और पुरुष दोनों के समन्वय से दुनिया चलती थी, और इतनी सुंदर दुनिया जिसके लिए कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ऐसा हमारा भारत देश था और ऐसे हम थे। इसीलिए आज भी जब कई व्यक्ति अपने घर में पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, कुल देवी की पूजा कर रहा हूं, कुल देवता की पूजा कर रहा हूं। यानी हम सभी के एंसेस्टर्स कौन थे? देवी देवता थे। पर हमने क्या पढ़ा साइंस में, डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? बंदर थे। आप ही सोचो, हम सभी, आप सभी टीचर बैठे हैं, हम भी राजयोग का टीचर हैं, पर थोड़ा सा बुद्धि का यूज करें, क्या कोई चीज पुराने से नहीं हुई है? लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहती है? हर चीज नए से पुरानी होती है, पुराने से नई कभी होती है? पहले हर एक आत्मा परफेक्ट स्टेज में थी, धीरे धीरे इम्परफेक्शन आती है। हम भी जब छोटे थे ना, बॉडी कितनी ब्यूटीफुल थी, हम भी कितने अच्छे थे, इनोसेंट थे, दीन दुनिया का पता नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बॉडी में भी इम्परफेक्शन आई, आत्मा की क्वालिटी भी डाउन हो गई। ऐसे हुआ, खुद ही देखते हैं ना दुनिया के अंदर, कोई भी चीज ऐसी देखी जो पहले पुरानी थी फिर नई हो गई? नहीं ना। तो ये दुनिया भी पहले बहुत ब्यूटीफुल थी, सत्व प्रधान थी, हर एक मनुष्य आत्मा परफेक्ट थी। ये तो ड्रामा में जन्म पुनर्जन्म लेते लेते इम्परफेक्शन आई है। चलो 2 मिनट के लिए याद करते हैं अपनी उस परफेक्ट स्टेज को। याद करें, हमारे अंदर ही मर्ज है, क्योंकि हमने ही वो किरदार अदा किया है। चलो 2 मिनट के लिए बस भूल जाते हैं आज के इस समय के अपने स्वरूप को, और याद करते हैं अपने अंदर की उस दिव्यता को, जहां कहते हैं देवी देवताएं थे इस दुनिया में। हर वो मनुष्य आत्मा जिसमें दैवी गुण आ जाते हैं, वो देवात्मा बन जाती है। हमारे भीतर वो दिव्यता मर्ज है। अभी 2 मिनट में वो अपने भीतर की उस दिव्यता को इमर्ज करते हैं। याद करते हैं जब पहली बार मैं सोल अपने घर से अपना पहला रोल अदा करने पहले कॉस्ट्यूम में आई थी। याद करें? चलो 2 मिनट के लिए इस दुनिया का सब कुछ भूल जाते हैं, स्मृति में लाए। अपनी उस परफेक्ट स्थिति को जब ऊपर इस दुनिया से पार, परे ते परे परम धाम सोल वर्ल्ड से मैं आत्मा पहली बार इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित हुई थी। फील करें एक लाइट, एक एनर्जी सितारे की तरह ऊपर से आई और मुझे मिली एक परफेक्ट ब्यूटीफुल बॉडी। निरोगी काया, कंचन काया, आंखों में चमक, होठों पर सदा की मुस्कुराहट, चेहरे पे चमक, महसूस करें अपनी आंतरिक और बाह्य संपन्नता को, अपने भीतर की ऊर्जा को। स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित मेरी वो परफेक्ट स्थिति, वो परफेक्ट रोल जब प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, जब ये देह भी सत्व प्रधान थी, सोने की दुनिया, सोने के महल, हाँ ये सब कुछ इसी दुनिया में था और मैं भी अपनी परफेक्ट स्टेज में इस परफेक्ट दुनिया में थी। ये मैं हूं और मुझे पुनः अपने इसी स्वरूप को प्राप्त करना है। ओम शांति। तो सतयुग में हम सभी ने 8 जन्म लिए, तो आप सोचो 1250 वर्ष में 8 जन्म, तो इंसान की एवरेज आयु कितनी ज्यादा हो गई। तो उस समय हम सभी की एवरेज आयु 150 वर्ष थी। तो सोचो 1250 वर्ष में हमने 8 जन्म लिए, जब सतयुग था और उसके बाद आया 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग, सिल्वर एज। तो गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, जिसे कहते हैं चंद्रवंशी घराना। तो पहले थे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य, और फिर हुआ श्री राम, श्री सीता का राज्य। तो सीता राम जी का राज्य त्रेता युग से आरंभ हुआ, इसीलिए श्री रामचंद्र कहा जाता है, तो चंद्रवंशी घराना कहा जाता है। और उस समय भी इस दुनिया में देवी देवताएं ही थे, हम सब में वो दिव्यता विराजमान थी। और डिविनिटी कैसे आती है, जब हम अपनी एक्चुअल सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हैं। सतयुग और त्रेता में आत्मा बॉडी कॉन्शियस नहीं थी, हम आत्माएं अपने इस रोल को सोल समझकर अदा करते थे। सोल बॉडी के ऊपर पावरफुल थी, तो सोल समझकर जब हम रोल अदा करते हैं, और वो भी सोल कौन सी, परफेक्ट सोल। परफेक्ट सोल परफेक्ट रोल अदा करती है। तो ये सतयुग और त्रेता में होता है, और इसीलिए कोई गलती नहीं होती उस दुनिया के अंदर, क्योंकि अब तक आत्मा सतयुग और त्रेता में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर अपना हर कर्म कर रही है। उसे पता है कि ये मेरा रोल है और मैं सोल हूं। आज क्या है, आज आपको बार बार याद दिलाया जाए, बचपन में भी हमने पढ़ा और हम पढ़ाते भी हैं, क्या कि आप एक आत्मा है, देह नहीं है, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। न जाने कितनी बार यहां आने से पहले हमने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, फिर भी अगर पूछे आप कौन हो, तो यहां पर तो फिर भी अभी मेरे सामने बोल देंगे मैं आत्मा हूं, पर वैसे कोई पूछे तो सोल याद आती है या रोल याद आता है? अपना नाम बताएंगे, अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सोल थोड़ी ना याद आती है। तो अब क्या है, रोल हमारी सोल पर हावी हो चुका है। याद कराओ, बार बार याद कराओ, तो भी याद रहता ही नहीं है ना। अभी रोल प्रधान है और सोल नीचे है, कनिष्ठ हो चुके हैं। परंतु सतयुग और त्रेता में से बिल्कुल विपरीत था, यूं कहे वहां पर बिल्कुल राइट डायरेक्शन में ये साइकिल चल रही थी। तो सिल्वर एज में भी वही 1250 वर्ष, मून डायनेस्टी यानी चंद्रवंशी घराना, परंतु नंबर ऑफ बर्थ बढ़ जाते हैं, 12 जन्म होते हैं, तो एवरेज आयु पहले से कम हो गई। वर्ष उतने ही हैं 1250 वर्ष, परंतु जन्म बढ़ जाएंगे तो एवरेज आयु घट जाएगी ना, क्योंकि जन्म पुनर्जन्म लेते आत्मा में कमी तो आएगी ना। तो सतो प्रधान से आत्मा सतो रह जाती है, सातो गुण होते हैं पर प्रधान नहीं होते। जैसे चंद्रमा, सेकेंड डे देखो, पूर्णमासी के अगले दिन देखो तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पता नहीं चलता है पर थोड़ा कम हो जाती है लाइट, बहुत थोड़ी कम होती है। तो मून डायनेस्टी में भी आत्मा होती तो देवतुल्य ही है, देवता ही होती है, क्वालिटीज होती हैं परंतु थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और डिग्रीज 16 सेलेस्टियल से 14 सेलेस्टियल रह जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। और उसके बाद क्या होती है फिल्म के अंदर, इंटरवल जब होता है तो उसके बाद आता है एंट्री किसकी होती है, किसकी होती है, विलन की एंट्री होती है। तो हमारी इस स्टोरी के अंदर विलन कौन है, विलन कौन है? गीता में लिखा है आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये देह अभिमान है जो हमारे जीवन में हर विकार की जड़ है, ये प्रारंभ हो जाता है। आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है, एनर्जी डाउन होती है, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस इस पर हावी होने लगती है। और पांचों विकार कौन कौन से हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने लगता है। धीरे धीरे, अभी जस्ट एंट्री हुई है, आते ही विलन अपना रंग नहीं दिखाता है। तो कॉपर एज में, द्वापर युग में विलन की एंट्री शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आना शुरू करती है। ऐसे हम आत्माएं धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आई, ऐसे नहीं द्वापर शुरू होते ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। और तब इस दुनिया में अलग अलग रिलीजियन आने शुरू होते, द्वापर डुअलिटी शुरू हो जाती है। अब तक इस संपूर्ण सृष्टि में देवी देवता घराना था, उसके बाद और रिलीजन आने शुरू होते हैं। सबसे पहले 2500 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म की स्थापना होती है मोहम्मद साहब के द्वारा, और उसके 250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना होती है महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो जैसे जैसे वो धर्म की आत्मा इस सृष्टि में आती है, उससे रिलेटेड जो सोल्स हैं वो भी ऊपर परम धाम से आना शुरू होती जाती है। और एज ए रिजल्ट धीरे धीरे सृष्टि रंगमंच पर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। कई बार पूछते हैं ना कि क्यों बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सोल्स हैं वो तो जन्म पुनर्जन्म में आ ही रही हैं, परंतु ऊपर से अलग अलग धर्मों की सोल्स भी परम धाम से आनी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे इस सृष्टि रंगमंच पर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, रिलीजन बढ़ते जाते हैं। तो इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर उसके 250 वर्ष के बाद क्रिश्चियनिटी, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रिश्चियन धर्म, बौद्धिज्म के पैरेलल ही महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म की स्थापना भी होती है। दोनों को लगभग बराबरी वर्ष हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे, ये है मोटे मोटे इंपॉर्टेंट धर्म जो आज इस दुनिया के अंदर व्यापक है, और बाद में धीरे धीरे और मठ पंथ भी आते रहते हैं और उनकी सोल्स भी ऊपर परम धाम से आती जाती है। तो दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और आत्मा की क्वालिटी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण धीरे धीरे घटती जाती है। और आत्मा की डिग्री द्वापर युग में कितनी रह जाती है, आधी, जैसे क्या होता है आधा चंद्रमा रह जाता है, तो 8 degrees। तो आत्मा की क्वालिटी डाउन हो गई, बॉडी सोल के ऊपर हावी होना प्रारंभ हो गई। और कॉपर एज के बाद जब आयरन एज आने शुरू होती है तो क्या होता है, टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस। इसीलिए हम कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे ना, वो फिर भी अच्छे थे, याद करते ना मेरे दादा पर दादा, वो तो बहुत अच्छे थे, वहां पर ऐसी कमी नहीं थी। खुद भी हम याद करते हैं, ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर सदा से ही ऐसी स्थिति थी। रात्रि होती है, अंधकार स्टार्ट होता है तो दिखना बंद हो जाता है और तब लाइट की जरूरत होती है। उससे पहले फिर भी कुछ ना कुछ दिखता है, सायंकाल में भी दिखता है, पर अब आयरन एज में इस दुनिया में टोटल द्वापर में तमो और आयरन एज में धीरे धीरे तमो प्रधानता आ जाती है। घोर कलयुग, जब आत्मा को 100 बार भी याद दिलाओ आप आत्मा हो, वो कहती नहीं नहीं मैं तो बॉडी हूं। टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, कई बार कहते ना भगवान सर्वव्यापी है, पर नहीं, ये विकार सर्वव्यापी हो जाते हैं। हर एक के घर में, हर एक की देह में, हर एक आत्मा में विकृतियां आ जाती हैं। परफेक्शन नहीं, डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आज देख लो, है कोई बॉडी जिसमें रोग ना हो? है कोई मन जिसमें शोक ना हो? तन से बीमार है, मन से बीमार है, धन की प्रॉब्लम्स है, संबंधों की प्रॉब्लम्स है, हर घर में है, हर व्यक्ति के अंदर है, है कि नहीं है? हर चीज अति की ओर जाती है, इसे कहते हैं तमो प्रधानता। पॉपुलेशन भी अति की ओर जा रही है, विकार भी अति की ओर जा रहे हैं। न्यूज सुनो तो कान बंद करने और आंखें बंद करने का मन करता है, देखने लायक नहीं लगती ये दुनिया। जैसे अंधेरे में डर लगता है ना, वैसे इस दुनिया के अंदर भी इंसान को डर लगने लगा है। घर से निकलने में डर लगता है, कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सब सिम्टम्स हैं घोर कलयुग रात्रि के। रिलीजियंस हैं, गुरु हैं, महात्माएं, समझ नहीं आता कहां जाएं कहां ना जाएं। बुद्धि भटकती है, जैसे अंधेरे में इंसान भटकता है, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, क्या सही है और क्या गलत है, डिफरेंस करना भूल जाते हैं। नजर नहीं आता ना, अंधेरे में चले जाओ कहो लेकर आओ, तो समझ नहीं आता सही क्या है गलत, दिखाई नहीं दे रहा है। उजियारा होता है तो पता चलता है, ओ लाइट ऑन करो तो पता चलता है ये है। तो ये समय घोर कलयुग का है, परंतु परंतु ये साइकिल है जो एज इट इज रिपीट हो रही है, कहा ना साइकिल है, तो इसके बाद दोबारा से साइकिल भी रिपीट होनी है, और उससे पहले रात्रि खत्म होते हुए और अगला दिन आने से पूर्व कौन सी वेला आती है, कौन सी वेला आती है? अमृत वेला आती है, जब सूर्य उदय होने लगता है। इसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये समय इस संपूर्ण सृष्टि का वो समय है जिसे कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जब कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, और तब स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आकर स्वयं का, हमारा और इस संपूर्ण सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। ड्रामा खत्म होता है तो सारा ड्रामा याद आने लगता है। और क्यों याद दिलाया जा रहा है ड्रामा? क्योंकि हर एक्टर अपने एक्ट से बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है। डायरेक्टर को भूल गया, डायरेक्शंस को भूल गया, रॉन्ग डायरेक्शन में हर एक एक्ट कर रहा है। अब आपको एक वंडरफुल बात बताते हैं कि ये ड्रामा को जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि हर एक नॉलेज जो हमें दी जाती है ना, उस ड्रामा या फिर उस नॉलेज की इंफॉर्मेशन जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते ना, तब तक मजे नहीं आते हैं। तो अभी हम जानेंगे इस ड्रामा की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले ये ड्रामा है, इस ड्रामा को हम कहते हैं, इसी की यादगार में हम हर कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व स्वास्तिका बनाते हैं। स्वास्तिका यानी सुअस्तिका, ये ड्रामा हमें बताता है कि इस दुनिया में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है वो अच्छा हुआ था, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। जब इस ड्रामा को स्मृति में रखकर हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, बुद्धि को इस परफेक्ट स्टेज में रखकर कार्य करते हैं, तो हर चीज एक्यूरेट होने लगती है, क्योंकि ये ड्रामा को बनाने वाला खुद परफेक्ट है। अब ये ड्रामा हमें क्या क्या सिखाता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये ड्रामा हमें सिखाता है कि आप एक्टर हो तो एक्ट करो, रिएक्ट मत करो, है ना। अक्सर क्या होता है, ड्रामा के अलग अलग सीन्स को देखकर क्या होता है, हमें लगता है ये सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, करते हैं, मन में आता है ये होता तो वैसा होता, है ना, क्वेश्चन मार्क आते हैं दूसरों को देखकर। पर भाई ये ड्रामा है, ड्रामा में हर चीज एक्यूरेट है तो पैनिक किस बात का, साक्षी हो जाओ। आप भी एक्टर हो, दुनिया में हर व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, एक्टर्स को देखकर अपना रोल मत भूल जाओ। तो हर सीन एक्यूरेट है, हर बात एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा है। आप फिल्म देखते हो, फिल्म शूट हो गई, अब कहो कि नहीं इसको ऐसे डायलॉग बोलना चाहिए तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, बदल सकते हो? नहीं, आपका अंदर से इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं पर ड्रामा वही रहेगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ड्रामा चल रहा है और हर चीज ठीक है। ड्रामा हमें पास्ट को फॉरगेट करने के लिए मदद करता है। देखो, कोई भी ज्ञान होता है, कोई भी नॉलेज, समझो ग्रामर की नॉलेज है, उसमें फुल स्टॉप लगाना है, तो केवल फुल स्टॉप है, केवल कॉमा है, केवल एक्सक्लेमेशन है, केवल क्वेश्चन मार्क है, ये जानना जरूरी नहीं है। परंतु फुल स्टॉप लगाना कहाँ है, कॉमा लगाना कहाँ है, एक्सक्लेमेशन लगाना कहाँ है, जब तक वो नॉलेज नहीं है तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। तो एक है नॉलेज और एक है नॉलेज को अप्लाई करने की नॉलेज, कहाँ कौन सा ज्ञान अप्लाई करना है। तो ये ड्रामा का ज्ञान परमात्मा में तब देते हैं जब ये ड्रामा पूरा होता है। जैसे फुल स्टॉप कब लगाते हैं, सेंटेंस से पहले या बाद में? अगर पहले लगा दो तो मार्क्स मिलेंगे बच्चे को, फिर फुल स्टॉप तो पता है ना, अब जब कहीं भी लगा दो ऐसे चलेगा, मार्क्स दोगे आप? फुल स्टॉप का ज्ञान है, कॉमा का ज्ञान है, केवल जरूरी थोड़ी ना इतना, लगाना कहाँ है। तो कई बार हमसे लोग पूछते हैं, है ना, पूछते हैं ना कि जब ड्रामा एक्यूरेट बनाई हुआ है और हमारा रोल ऑलरेडी डिसाइडेड है, एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें ना? क्वेश्चन आता है, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ, करते हैं ना कई लोग ये क्वेश्चन। तो याद रखो, फुल स्टॉप कब लगता है, पहले या बाद में? बाद में लगता है। ये ड्रामा का ज्ञान हमें इसलिए दिया जाता है ताकि आप पास्ट में जो हो गया उसे फॉरगेट करो और एक नए सिरे से अपनी लाइफ आरंभ करो, पन्ना पलटो। ये फुल स्टॉप आपको अब लगाना है। जब जैसे ही आपको इस फुल स्टॉप का ज्ञान मिलता है, आप पास्ट की बातों को फॉरगेट आसानी से करते हो। अब मुझे नया सेंटेंस स्टार्ट करता है, इसीलिए इस फुल स्टॉप को पहले मत लगाना, कभी भी नहीं। अब इस समय से मुझे अपना कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुष बनकर रथ को चलाना है। अब तक बहुत हो गया द्वापर और कलयुग में रथ समझकर पुरुष के ऊपर हम हावी हो गए। आत्मा है पुरुष और ये शरीर है रथ। अब पुरुषार्थ करना है, पुरुष बनकर आत्मा समझकर इस रथ को चलाना है, ये पुरुषार्थ करना है। तो पहले लगाना है फुल स्टॉप, जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट पुरुषार्थ करना है, है ना। तो जब जब लाइफ के अंदर ड्रामा पास हो जाए, कर्म करो परंतु कर्म करने के बाद जो हो जाए तुरंत फुल स्टॉप लगाओ और अगला सेंटेंस स्टार्ट करो। तो ये ड्रामा का ज्ञान हमें मदद करता है फॉरगेट करने के लिए और फॉरगिव करने के लिए, आगे बढ़ो। और दूसरी बात, वंडरफुल बात ये ड्रामा बताता है कि इस दुनिया में ड्रामा है ना, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोल है, यूनिक रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है सबका। कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जब मैं कर सकती हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता, होता है ना ऐसे ना, इसका बच्चा कर सकता है मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता। उसको कहते हैं भाई वो फर्स्ट आ सकता है तू क्यों नहीं फर्स्ट आ सकता, भाई वो भी तो तुम्हारी तरह तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, वही टीचर तुम्हें पढ़ाती है ना, ऐसे कहते हैं ना। परंतु समझ के चलो ये ड्रामा है, ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना रोल है ना। स्कूल के अंदर सारे प्रिंसिपल होते हैं क्या, सारे एक सब्जेक्ट के टीचर होते हैं क्या, होते हैं। ऑफिस के अंदर सारे बॉस होते हैं क्या, नहीं ना, कुछ मैनेजर होंगे, कुछ लो लेवल के स्टाफ होंगे, कुछ उससे भी लो लेवल के स्टाफ होंगे। हर एक का अपना रोल है ना, रोल अलग अलग रोल है। और एक जैसा रोल हो जाए, आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें सारे हीरो, देखिए कोई ऐसी फिल्म, और अगर हो जाए ऐसी फिल्म तो कैसा लगेगा, देखोगे वो फिल्म, सारी हीरोइन हो, सारे कॉमेडियन हो, सारे साइड एक्टर हो, देखिए ऐसी फिल्म, हाँ कैसी लगेगी ये फिल्म, है ना। कहते तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा घर का पानी। अब ऑफिस के अंदर कोई पियोनी ना हो तो आपको पानी कौन पिलाएगा, आप कहो कि मेरे जैसी बुद्धि इसको क्यों नहीं है, ये भी तो पढ़ सकता है। पर नहीं, ये क्या है, याद रखो ये क्या है, ड्रामा है। इस ड्रामा में हीरो भी है, हीरोइन भी है, कॉमेडियन भी है, साइड एक्टर भी है, हर एक का अपना अपना रोल है। और हर एक का रोल परफेक्ट है, यूनिक है ना। मेरा रोल वो अदा नहीं कर सकता और उसका रोल मैं अदा नहीं कर सकता। तो सब लोगों का आपको अंदर से सम्मान होगा, है ना, इसका रोल अच्छा है, ये मेरा रोल है, ये इसका रोल है, इंजॉय करोगे। क्योंकि ये ड्रामा की यही ब्यूटी है ना, यही इस ड्रामा की ब्यूटी है, डिफरेंस, अलग अलग सोल, अलग अलग रोल। इसी से इस रंगमंच की शोभा है, जैसे एक गार्डन की शोभा अलग अलग फूलों से होती है ना, कहीं गुलाब है तो कहीं मोतियां हैं, कहीं अक है, कहीं कांटे हैं, कहीं पत्ते हैं, कहीं पेड़ हैं। तो अलग अलग वैरायटी इस दुनिया की शोभा है, इस वेरिएशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, इंजॉय करो, ये इसका रोल है। और हम सभी सोल हैं, है ना। और ये ड्रामा में क्या सिखाता है, वंडरफुल बातें सिखाता है, अगर आप सीखने लग जाओ ना आपको बड़े मजे आए। ये बताता है कि आप एक्टर हो, डायरेक्टर नहीं हो। ठीक है, सिखा रहे हैं हम बच्चों को, पर फिर भी डायरेक्टर नहीं है, रोल कॉन्शियस नहीं हो जाओ इतना कि अपनी आत्मा की ओरिजिनलिटी को भूल जाओ। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। अब इस स्वरूप में रहकर अपना रोल अदा करो, बताओ। पर कॉन्शियस नहीं हो जाओ, डायरेक्टर मत समझने लग जाओ अपने आप को कि मुझे ही ये करना है। कुछ उस डायरेक्टर पर छोड़ दो, वो दिखा देगा हर एक को। और दूसरी बात, नथिंग न्यू। कई बार क्या होता है, कई सीन्स हमें पसंद नहीं आते, होता है ऐसे, है ना? कई बार आप कहेंगे ये सीन अच्छा नहीं है, है ना? मेरी जिंदगी में ये हुआ क्यों, है ना? ये अच्छी बात नहीं हुई ना? कई सीन्स इस ड्रामा में हमें पसंद नहीं आते हैं, पर एक बात याद रखो, जैसे इस दुनिया में, इस ड्रामा में हर सीन के साथ हर एक्टर अलग अलग है ना, वैसे कोई भी सीन दूसरे सीन से मैच नहीं करता, ये भी याद रखो। अगर आज रात है आपकी सीन के अंदर, अगले सीन में दिन आने वाला है। कोई भी सीन स्टेबल नहीं रहेगा, बदलेगा, सीन बदलेगा। ये सीन आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, अगला सीन आपके फेवर में होने वाला है, इसलिए वेट एंड वॉच। हताश नहीं हो, कई बारी सीन्स हमें पसंद नहीं आते ना, हम निराश हो जाते हैं। कई लोग इसी कारण सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, ये तो खुद को मार देते हैं तो दूसरे को मार देते हैं, क्यों सीन पसंद नहीं आया मुझे अपनी लाइफ के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, ये बदल जाए, जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं ड्रामा है, अलग अलग सीन्स हैं, बदल जाएगा। हर रात के बाद सुबह आती ही है, चाहो ना चाहो आएगी, जस्ट वेट। ये जो धैर्यता है, ये जो सहनशीलता है, ये पाठ सीखने का है, ये परीक्षा की घड़ी है। कोई भी चीज सेम नहीं रहने वाली है हमारी लाइफ के अंदर। ये जो विलन आए हैं ना, जो आपको पसंद नहीं आते अपनी लाइफ के अंदर, है ना? ड्रामा है तो विलन भी है ना आपकी लाइफ के अंदर, पर हमें विलन पसंद नहीं है, ऐसा है? सोचते हैं ना, ये विलन चला जाए ना मेरी लाइफ से, सब चीजें ठीक हो जाएं, ऐसा सोचते हैं, है ना? मन में आता है, पर आपको पता है इस ड्रामा में हीरो की इंपॉर्टेंस किससे होती है, किससे होती है? विलन से होती है। आप सोचो, भागवत के अंदर श्री कृष्ण के सामने अलग अलग असुर आते हैं और फिर वो उनसे लड़ाई करता है। रामायण में दिखाते हैं श्री राम के साथ, वो भी कथा है, कहानी बताते हैं, अलग अलग असुर आते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। अगर रावण ना हो तो राम की इंपॉर्टेंस कैसे पता चले? अगर कंस ना हो तो श्री कृष्ण की इंपॉर्टेंस कैसे पता चले? आपकी लाइफ के ये विलन आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए आए हैं, वो बताने आए हैं आपके अंदर कमी कौन सी है। अभी भी सहन शक्ति की कमी है, बढ़ाओ इसे। ये बताने आए हैं, अभी धैर्यता की कमी है, बढ़ाओ इसे। वो आपके सबसे बड़े टीचर हैं, आपको अनुभवी बनाने आए हैं ये विलन, आपके अंदर को निखारने आए हैं ये विलन। ये ना हो तो आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ ही ना पाओ। ये बढ़ाते हैं, आपको निखारते हैं, आपके जीवन की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अभी हम ऊपर स्पोर्ट्स विंग की कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कोच आया हुआ था और उसने मुझे बताया कि किस तरह से उसके जो ऑफिसर है उसके आगे ट्रबल क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसके अंडर जो काम करते हैं, जो बच्चों जिनको वो ट्रेनिंग देता है, वो प्रॉब्लम्स में आते हैं और मुझे पसंद नहीं आती। मैंने उसे पूछा, अगर समझो ये प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम नहीं आती और आप एक हायर पोजिशन पर पहुंच जाओ और आपके सामने एक कोच आए और बताए, पूछे आपसे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करूं? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कभी आई नहीं, आप बताओगे कैसे? बताओगे तो तब ना, जब आपकी लाइफ से भी आप इन चीजों से होकर गुजरे हो। एंड में ये अनुभव, ये अनुभव की अथॉरिटी बहुत काम में आती है। और ये ड्रामा बताता है, ये ड्रामा है, साइकिल है, चलती जा रही है, जो करना है अब कर लो, टाइम पास हो रहा है, ये पल ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो, हर वक्त अपने हर किरदार को बस बेस्ट तरीके से अदा करो, अपना फुल फोर्स लगाओ, अच्छी तरह इंतजार नहीं करो, आप हर पल इस सृष्टि रंगमंच पर हो, जैसे इस मंच पर बैठकर इंसान आपको स्टेज पर बिठाए आप ध्यान रखोगे ना अपना, वैसे ही हर पल सृष्टि रंगमंच पर हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी हर परफॉर्मेंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से अदा करो। ये ड्रामा हमें होप देता है, हर रात के बाद सुबह आती है, ये ड्रामा हमारे मन को ब्रॉडर बनाता है, विशाल बुद्धि बनाता है, हमें एकजुट बनाता है, हमें पता चलता है इस सृष्टि रंगमंच पर, इस बेहद के ड्रामा पर हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान है, वन फादर और हम उन सब उस फादर के बच्चे, वन गॉड वन फैमिली, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई केवल कहने के लिए नहीं है, केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है, परंतु हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है, हमारे दृष्टिकोण को बड़ा करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है, और यदि आपको इस ड्रामा में ऐसा लगे कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये ड्रामा में सिखाता है कि चलो ठीक है, रोल मत अदा करो, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर बन जाओ, डिटैच हो जाओ, डिटैच होकर सीन को देखो, अपने किरदार को देखो, है ना, कभी सोचो जब गुस्सा करते हो और फिर उस अपने आप को ऑब्जर्व करो, कैसा लगता है, उस समय मैं कौन होता हूं, हीरो या विलन, हाँ हीरो या विलन, अच्छा लग रहा है अपना किरदार मुझे, चेंज करो, चेंज करो, मुझे विलन नहीं बनना है, मुझे हीरो बनना है, डिटैच होकर देखो, खुद को भी देखो, दूसरे को भी देखो, समझ जाओ ये उसका रोल है, मुझे अपना रोल खराब नहीं करना है, क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा उसी के अनुरूप मुझे फल मिलने वाला है, इसलिए अपने रोल पर फोकस करो, आपके रोल को देखकर हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी अपना रोल बदल ले, ना कि आप विलन को देखकर अपना रोल बदलो, अक्सर यही होता है ना, हम क्या करते हैं, विलन को देखकर अपना रोल बदल लेते हैं ना, वो गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करने लग जाते हैं, फिर क्या करते हैं, हम तो हीरो थे, अभी अभी मुस्कुरा रहे थे और अभी अभी गुस्सा करने लग गए, किरदार बदल लिया ना, तो अपने रोल पर फोकस करो, मैं हीरो हूं, मुझे परफेक्टली अपना रोल अदा करना है ना, एक ही जन्म के अंदर हम अलग अलग रोल अदा भी करते हैं, ये याद रखना, इस सृष्टि रंगमंच पर जो व्यक्ति या जो एक्टर एक ही जन्म में भी अलग अलग रोल अदा करने में परफेक्टली सक्षम है, वही हीरो किरदार है। इस पर एंड में मैं एक छोटी सी वंडरफुल मजेदार स्टोरी सुनाती हूं और फिर हम अपनी रोल कॉन्शियसनेस में आएंगे। एक बार क्या हुआ, वंडरफुल बात बताती हूं, एक बार एक व्यक्ति था, उसको रामलीला में रोल दिया गया, उसे कहा कि भाई आप एक काम करना, आपको वानर सेना के अंदर रावण के साथ उसकी सेना के साथ युद्ध करनी है, ठीक है, उसने कहा एक और काम करो, मैं आपको दो रोल देता हूं, आपको डबल सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, क्या करना है आपको, पहले वानर सेना में जाना है, रावण की सेना के साथ युद्ध करनी है, फिर उसके बाद मर जाना है, और फिर जाना है आपको रावण की सेना में, और फिर वहां युद्ध करना है, वहां भी मर जाना है, तो तो अगर आप दोनों रोल अदा करोगे तो आपको डबल सैलरी मिलेगी। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसने क्या किया, पहले राम की सेना में गया, लड़ाई करी, मर गया, फिर रावण की सेना में चला गया। जैसे ही वहां लड़ाई शुरू करी, सारी रामलीला चौपट हो गई और सारे लोग टमाटर आलू सब फेंकने लगे रंगमंच पर। क्या हो गया, क्या हो गया, सोचो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या किया होगा उसने, इतनी बड़ी गड़बड़ होगी रामलीला में। वो व्यक्ति अपना मास्क बदलना ही भूल गया और सारी रामलीला चौपट हो गई। अब अपने आप से पूछो, ये गलती हम तो नहीं करते, ऑफिस का मास्क उठाकर घर तो नहीं ले जाते, घर का मास्क उठाकर ऑफिस तो नहीं ले जाते। हाँ, पति से लड़ाई हो गई, वही मास्क पहनकर सासू माँ के पास तो नहीं चले जाते। होता है ऐसे, होता है ऐसे, यहां का गुस्सा वहां, वहां का गुस्सा यहां, वहां के इमोशंस यहां, जहां पर जोर चले वहां पर। तो इसीलिए याद रखो, जब भी लाइफ में टेंशन होने लगे तो हम सिखाते हैं उसके आगे ए लगा देना, अटेंशन, चेक करो, चेंज करो, मास्क बदली करो, याद करो, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो किरदार अदा करने वाली परफेक्ट एक्टर हूं। तो एंजॉय करें इस ड्रामा को, और अब 2 मिनट के लिए सृष्टि रंगमंच पर अपने किरदार को अनुभव करें, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ओम शांति। एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स करें, एकदम हल्का, पैरों को हल्का छोड़ दें, हाथों को हल्का छोड़ दें, शरीर के मध्य भाग को भी बिल्कुल लाइट हल्का छोड़ दें। संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा। मैंने ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम धारण किया है, ये कॉस्ट्यूम मैं पहली बार धारण नहीं कर रही। याद करें, इस सृष्टि चक्र में जब मैं शुरू में आई थी तो मेरी सतो प्रधान दिव्य गुणों से संपन्न कंचन काया थी। याद करें, उस समय मैं स्वयं को आत्मा समझकर अपने निजी गुणों के साथ अपना रोल अदा करती थी। मेरे भीतर की ऊर्जा मेरी बाह्य देह से स्पष्ट प्रकट होती थी। याद करें अपने उस खूबसूरत सुंदर काया को, फिर भिन्न भिन्न देह धारण करते जन्म पुनर्जन्म में आते। मैं सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर युग में आई, और न जाने कैसे मेरे अंदर की शक्तियां क्षीण हो गई। ये देह, देह की स्मृति मुझ पर हावी होने लगी, मैं खुद को भूलने लगी, और जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग अंत में आकर अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गई। अब महसूस करें, बिल्कुल अपने सामने सुप्रीम डायरेक्टर, क्रिएटर, परम पिता परमात्मा, ज्ञान सूर्य मुझे पुनः मेरी वास्तविकता का बोध करा रहे हैं, मुझे इस झूठ से सत्य की ओर, इस मृत्यु से अमृतत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। महसूस करें अपने हीरो किरदार को, अब मुझे इस देह में रहते अपना हर रोल परफेक्टली अदा करना है। सुप्रीम डायरेक्टर की डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करना है। मैं हीरो किरदार आत्मा हूं, मैं परफेक्ट हूं। ओम शांति। एंड में बस दो लाइंस कहूंगी। भगवान हमसे कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो एक बार इस ड्रामा के राज को समझकर अपना किरदार अदा करके देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू। ओम शांति।